समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
इंसान जितनी बड़ी उपलब्धि चाहता है उसको त्याग भी उतना ही करना पड़ेगा। त्याग के बिना उपलब्धि केवल सपना बनकर रह जाएगी। इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर शुरू करते हैं आज सवेरे कार्यक्रम। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनीता आनंद। अनीता, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड दी आकाशवाणी नेटवर्क। यू आर लिसनिंग टू आज सवेरे, आवर ever exciting daily news magazine program. Over the next half an hour, we shall bring you the latest from national, international news, updates from the metro cities, fascinating historical tidbits about this day, that is the 10th of December. So let's get started with today's top headlines. Mukesh?
जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में यातायात संपर्क को मजबूत करेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार आम लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे का निर्माण सुनिश्चित कर रही है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कल पहला विमान सफलतापूर्वक उतरा। दिल्ली से ये उड़ान कल दोपहर 1:30 बजे पहुंची। विमान में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ सवार थे। इस हवाई अड्डे से पहली व्यावसायिक उड़ान अप्रैल 2025 में शुरू होने की संभावना है। हवाई अड्डे का लगभग 85% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। संचालन शुरू होने के बाद इस हवाई अड्डे से प्रतिदिन 65 उड़ानें संचालित की जाएंगी। इनमें 62 घरेलू, 2 अंतर्राष्ट्रीय और 1 कार्गो उड़ान होगी। इससे प्रतिवर्ष लगभग 1,20,00,000 यात्री यात्रा कर सकेंगे।
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज सेड दैट गवर्नमेंट प्लान्स टू अपॉइंट 2,00,000 बीमा सखीज और इंश्योरेंस एजेंट्स over the next 3 years. Addressing a function to launch Bima Sakhi Yojana in Panipat, Ms. Sitharaman said that 25,000 Bima Sakhis will be appointed this year. Finance Minister said each woman insurance agent volunteer will receive a stipend of 7,000 rupees per month in the first year, 6,000 rupees per month in the second year, and 5,000 rupees per month in the third year. Prime Minister Narendra Modi yesterday launched the ambitious Bima Sakhi Yojana at a function in Panipat, Haryana. The Bima Sakhi Yojana initiative by the Life Insurance Corporation of India, LIC, aims to empower women aged 18 to 70 years who have completed Class 10. Finance Minister said in this year's budget, 3.3 lakh crore rupees have been earmarked for women-related schemes in the country.
Rashtrapati Draupadi Murmu aaj Nayi Delhi mein विश्व मानवाधिकार दिवस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यक्रम में शामिल होंगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि इस वर्ष मानवाधिकार दिवस के कार्यक्रम के बाद एक दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मानवाधिकार आयोग के गठन के बाद से अब तक मानवाधिकार के उल्लंघन के 23 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और इसके पीड़ितों को लगभग 256 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की सिफारिश की गई है।
Union Education Ministry has enhanced the material cost under the Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman PM Poshan by 13.7%. The ministry in a statement said that the material cost has been enhanced from 5.45 rupees to 66.19 rupees for primary and Balwatika classes and from 8.17 rupees to 9.29 rupees for upper primary classes. The revised rate has come into effect from 1st of this month. The central government will bear the additional cost of over 425 crore rupees in the financial year 2024-25 on account of this enhancement. The new rates will be applicable across all the states and union territories. However, they are free to contribute more than their prescribed share. PM Poshan scheme is a centrally sponsored scheme under which one hot cooked meal is served to 11.7 crore students studying in Balwatika and classes 1 to 8 in over 10 lakh government and government aided schools on all school days.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति बी आर गवई ने कहा है कि इस वर्ष 3 राष्ट्रीय लोक अदालतों में 7,70,00,000 से अधिक मामले निपटाए गए। इन लोक अदालतों में लंबित मामलों का समाधान किया गया। आकाशवाणी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण वर्ष में 3 बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करता है। न्यायमूर्ति बीआर गवई का पूरा साक्षात्कार आकाशवाणी पर आज शाम 7:10 पर विशेष कार्यक्रम सुर्खियों में प्रसारित किया जाएगा।
In Jammu and Kashmir, the Sri Mata Vaishno Devi Shrine in Katra has welcomed over 90 lakh devotees for the third consecutive year since 2022. The government plans to establish new Vaishnavi Bhavan, an exit track and an all-weather queue complex. Chief Executive Officer Sri Mata Vaishno Devi Shrine Board Anshul Garg highlighted several projects set for completion by 2025, including the new Vaishnavi Bhavan, with the family rooms and exit track for smoother crowd movement and an all-weather queue complex at Darshini Deori Banganga. The shrine nestled in the Trikuta hills of Riyasi River remains one of the India's most cherished spiritual destinations. The management has focused on enhancing facilities and ensuring a safer and more comfortable journey for the visitors.
और आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त हुआ है मेट्रो न्यूज का, तो अनीता सबसे पहले किस शहर की बात करेंगे?
चेन्नई। अ पैसेंजर प्लेन दैट डिपार्टेड फ्रॉम द सिटी दैट इज चेन्नई टू कोच्ची मेड एन इमरजेंसी रिटर्न टू चेन्नई एयरपोर्ट ड्यू टू सडन मैकेनिकल फेलियर ऑन मंडे मॉर्निंग। द प्लेन कैरिंग 84 पैसेंजर्स एंड 6 क्रू मेंबर्स एक्सपीरियंस्ड अ सडन मैकेनिकल फेलियर आफ्टर विच द पायलट अलर्टेड द कंट्रोल रूम एट चेन्नई एयरपोर्ट विच इंस्ट्रक्टेड द पायलट टू रिटर्न बैक टू चेन्नई। The passengers safely disembarked and accommodated in the airport lounges, and investigations into the mechanical failure was ordered. Karnataka has witnessed a steady rise in the number of women filing income tax returns, ITRs, over the past 5 years. The figure increased from 11.3 lakh in the assessment year 2019-20 to 14.3 lakh in 2023-24, reflecting a notable growth of approximately 26% over the period. Women accounted for 1/3 of all ITR filers in Karnataka in the latest assessment year, compared to 29% in 2019-20. This indicates that the growth in women filers has outpaced the overall growth in the state. Karnataka has proposed to implement as many as 170 projects with a total expenditure of nearly 556 crore rupees over the next 5 years to protect its coastline from erosion. The money will be spent to protect 33.34 kilometers of the state's coastline, according to a recent report by the Central Water Commission. While Karnataka has a total coastline of 318.8 kilometers, more than 40 kilometers, that is 12.61, is under erosion. The report underlines that various economic activities in the coastal area of the state have led to significant economic growth and generated employment and livelihood. However, beach erosion poses a significant challenge in certain sections along this stretch. Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy has unveiled the iconic Telangana Thalli Mother statue at the State Secretariat in Hyderabad last evening at a grand ceremony. The Chief Minister emphasized the statue's significance, stating, "Telangana Thalli symbolizes the spirit of the people, their resilience and their unwavering commitment to the state's development." He wrote on X that a historic milestone unfolded at the Dr. B.R. Ambedkar Telangana State Secretariat premises. The Telangana Thalli statue, crafted as a symbol of the state's pride and cultural identity, is in brass and stands at an imposing height of 20 feet. The statue depicts the mother goddess holding corn, signifying prosperity and self-sufficiency. Our correspondent reports the secretariat premises, decked in flowers and lights, saw dignitaries, ministers and cultural enthusiasts attending the inauguration. The event also witnessed a vibrant cultural display with traditional performances highlighting Telangana's rich heritage. And now for Metro News from Delhi, Mumbai and Kolkata, over to Mukesh.
जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं मुंबई के समाचारों की। महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने 33 वर्ष के इतिहास में पहली बार लोक अदालत का आयोजन किया। इसमें 138 मामलों का समाधान किया गया। न्यायाधिकरण की अध्यक्ष न्यायमूर्ति मृदुला भटकर के मार्गदर्शन में इस अभिनव पहल को सफलतापूर्वक लागू किया गया। 15वें यशवंत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लघु फिल्म प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है। प्रतियोगिता का विषय है महिलाओं और समाज की बदलती भूमिका। प्रतियोगिता के लिए निर्देशकों की आयु 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के 7वें संस्करण का ग्रैंड फिनाले 11 और 12 दिसंबर को मुंबई में होगा। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की शुरुआत 2017 में हुई थी। इस साल हैकाथॉन ने 54 मंत्रालयों, विभिन्न केंद्रीय विभागों और उद्योगों के 250 से अधिक वक्तव्यों के साथ नवाचार को बढ़ावा देने के लिए देश के समर्पण को प्रदर्शित किया है। और मुंबई विश्वविद्यालय भारतीय भाषा संरक्षण और संवर्धन केंद्र की स्थापना कर रहा है। इस केंद्र में भारतीय संविधान में सूचीबद्ध 22 भाषाओं के साथ साथ मराठी, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, कन्नड़, सिंधी, पाली, प्राकृत और उर्दू को विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में पढ़ाया जाएगा। इस संबंध में हाल ही में विश्वविद्यालय परिषद में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। रुक करते हैं कोलकाता महानगर की खबरों का। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में होटल व्यवसायियों के संघ ने बांग्लादेश से आने वाले पर्यटकों को प्रवेश न देने का निर्णय लिया है। ये निर्णय बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों और हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के कारण लिया गया। अनुमान है कि हर साल लगभग 20,000 बांग्लादेशी पर्यटक दार्जिलिंग जाते हैं। और अब बात करते हैं दिल्ली के समाचारों की। राजधानी में लंबे समय से हड़ताल कर रहे दिल्ली परिवहन निगम के संविदा कर्मचारियों को मांगों को दिल्ली सरकार ने मान लिया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि निगम में संविदा पर तैनात चालकों और परिचालकों को नियमित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में एक प्रस्ताव दिल्ली सरकार ने पारित कर दिया है और मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने डीटीसी की नई नीति भी बनाई है। इसके अंतर्गत चालकों और परिचालकों को उनके नजदीक के बस डिपो पर तैनात किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। दिल्ली में कल शाम 7 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 181 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी के कई इलाकों में भी सूचकांक में सुधार हुआ है। और प्रसार भारती सचिवालय में कल राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इन प्रतियोगिताओं में विभिन्न विषयों पर कार्यशालाएं और गोष्ठियां शामिल थीं। इस अवसर पर प्रसार भारती अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा कि हिंदी सभी भारतीयों को अपनी संस्कृति, इतिहास और विरासत से जोड़ती है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि राजभाषा का प्रसार और प्रचार करना सबका नैतिक दायित्व है। आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़, दूरदर्शन की महानिदेशक कंचन प्रसाद और दूरदर्शन समाचार की महानिदेशक प्रिया कुमार सहित कई अधिकारी और कर्मचारी इस समारोह में उपस्थित थे। अनीता, देश दुनिया के समाचार हो गए और महानगरों के भी समाचार हो गए
जी।
तो अब बारी है खेल जगत की हलचल जानने की। तो खेल जगत के समाचार लेकर स्टूडियो पहुंच चुके हैं हमारी सहयोगी फरत नाज। फरत, आप बताएं कि आज खेल खबरों की शुरुआत कहां से कर रही हैं?
जी हाँ मुकेश, खेल खबरों की शुरुआत हॉकी से। ओमान के मस्कत में जूनियर एशिया कप महिला हॉकी प्रतियोगिता में भारत ने मलेशिया को 5-0 से हरा दिया है। इस प्रतियोगिता के इतिहास की बात की जाए तो मलेशिया पर ये भारत की लगातार तीसरी जीत है। भारत की ओर से वैष्णवी फालके ने 32वें मिनट में पहला गोल किया। इसके बाद दीपिका ने 37वें, 39वें और 48वें मिनट में लगातार 3 गोल करके हैट्रिक बनाई, जबकि कनिका सिवाच ने 38वें मिनट में 1 गोल किया। इससे पहले भारत ने बांग्लादेश को 13-1 से हराया था। भारत का अगला मुकाबला कल चीन से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं अगर बात की जाए मुकेश शतरंज की, तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप की 12वीं बाजी में विश्व चैंपियन चीन के डिंग लेजेन ने भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को हरा दिया है। 14 बाजी के मुकाबले में दोनों खिलाड़ी 6-6 अंकों के साथ बराबरी पर हैं। गुकेश ने 11वीं बाजी जीती थी। 7.5 अंक लेने वाला खिलाड़ी नया विश्व चैंपियन बनेगा। और बात की जाए अगर बंगाल और उत्तर प्रदेश देश सैयद मुश्ताक अली T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के बारे में, तो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं ये दोनों। बांग्लादेश ने कल मोहम्मद शमी की 32 रन की पारी की बदौलत चंडीगढ़ को 3 रन से हराया। बंगाल के 159 रन के जवाब में चंडीगढ़ की टीम 156 रन ही बना सकी। वहीं उत्तर प्रदेश ने आंध्र को 4 विकेट से पराजित किया। उत्तर प्रदेश ने आंध्र के 157 रन के लक्ष्य को 19 ओवर में हासिल कर लिया। और वहीं ओडिशा मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से कटक में शुरू होगा। ये टूर्नामेंट 15 दिसंबर तक चलेगा। ये बैडमिंटन विश्व संघ का इस वर्ष का अंतिम वर्ल्ड टूर टूर्नामेंट है। भारत ने हाल में 5 खिताब जीतकर अच्छा प्रदर्शन किया है। आज पुरुष सिंगल्स में शाश्वत दलाल, चिराग सेन और वरुण कपूर अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। नितिन HV और अंगा पाई की जोड़ी मिक्स्ड में ध्रुव रावत और राधिका शर्मा के साथ मुकाबला करेगी। खेल खबरों में फिलहाल इतना ही।
आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे मुकेश कुमार और अनीता आनंद के साथ। आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त हुआ है मौसम का हाल जानने का, तो अनीता सबसे पहले दिल्ली का मौसम बता दें अपने श्रोताओं को। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और आसपास के इलाकों में आमतौर पर मौसम सामान्य रहेगा। सवेरे के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कोलकाता में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई का रुख करें तो आज वहां पर आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो ये बात हुई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की। अनीता, आप बताएं कि चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में कैसा रहेगा मौसम?
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 4 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 31 डिग्रीज। Bengaluru is expected to have mist. The minimum temperature was 19 degrees and the maximum will be around 29 degrees Celsius. Hyderabad is expected to have a generally cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 20 degrees and a maximum of 29 degrees Celsius.
और अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन इतिहास बन गई। आज 10 दिसंबर है और आज विश्व मानवाधिकार दिवस है।
जी, टू डिनाई पीपल देयर ह्यूमन राइट्स इज टू चैलेंज देयर वेरी ह्यूमैनिटी। नेल्सन मंडेला। एंड लाइक यू सेड मुकेश, ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली अराउंड द वर्ल्ड ऑन दिस डे, दैट इज 10th ऑफ दिसंबर। इट कमेमोरेट्स the anniversary of one of the world's most groundbreaking global pledges, the Universal Declaration of Human Rights, UDHR. This landmark document enshrines the inalienable rights that everyone is entitled to as a human being, regardless of race, color, religion, sex, language, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. The Universal Declaration of Human Rights holds the Guinness World Record as the most translated document, Mukesh. Yet, far too many people are still unaware of their basic rights as human beings.
बिल्कुल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष विजय भारती सयानी ने प्रत्येक व्यक्ति से मानवाधिकारों की संस्कृति को बढ़ावा देने और इसके संरक्षण के लिए खड़े होने का आह्वान किया है। विश्व मानवाधिकार दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि आयोग प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों और उनकी मान मर्यादा की रक्षा के लिए उनके सशक्तिकरण और प्रोत्साहन के प्रयास जारी रखने के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
जी।
और आज ही के दिन 1582 में फ्रांस ने ग्रिगोरियन कैलेंडर का उपयोग करना शुरू किया था।
एंड इन द ईयर 1902 सर रोनाल्ड रॉस वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन फॉर डिटेक्टिंग द कॉज ऑफ मलेरिया। इन द ईयर 1905 रॉबर्ट कॉक रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन फॉर हिज वर्क ऑन ट्यूबरक्लोसिस। In the year 1913, the Nobel Prize for Literature was awarded to Rabindranath Tagore, the Bengali poet from our country. And in the year 1979, Mother Teresa wins Nobel Peace Prize.
और 1887 की बात करें तो ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और ब्रिटेन के बीच बाल्कन सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1902 में तस्मानिया में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था और 1903 में पीरे क्यूरी और मैरी क्यूरी को भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1963 में अफ्रीकी देश जंजीबार ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल की थी और 1998 में आज ही के दिन अमर्त्य सेन को स्टॉकहोम में अर्थशास्त्र के लिए 1998 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और 1999 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ समझौते के अनुसार आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराना आर्थिक अपराध घोषित किया गया था। और 2004 की बात करें तो आज ही के दिन ढाका क्रिकेट टेस्ट में कपिल देव को पीछे छोड़ते हुए अनिल कुंबले टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए थे। और अब याद कर लेते हैं उन महान हस्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि है। इस क्रम में सबसे पहले किसको याद करेंगे?
Today is the birth anniversary. We start with birth anniversary. Mukesh, today is the birth anniversary of Emily Elizabeth Dickinson. Born on this day in 1830, she passed away in 1886 and was the American poet little known during her life, unfortunately. She has since been regarded as one of the most important figures in the American poetry. Emily Dickinson was born in Amherst, Massachusetts, into a prominent family with strong ties to its community. After studying at the Amherst Academy for 7 years in her youth, she briefly attended the Mount Holyoke Female Seminary before returning to her family's home in Amherst. Evidence suggests that Dickinson lived much of her life in isolation, as was considered an eccentric by locals. Although Dickinson was a prolific writer, her only publications during her lifetime were one letter and just 10 of her early, nearly 18,000 poems. The poems published then were usually edited significantly to fit the conventional poetic rules. Many of her poems deal with themes of death and immortality, two recurring topics in her letters to her friends, also aesthetics, society, nature and spirituality.
और आज पुण्यतिथि है स्वतंत्रता सेनानी चौधरी दिगंबर सिंह की। उन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। किसानों की भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन का पहला प्रयास उन्होंने ही किया था। किसानों की बात संसद में कहने के लिए दिगंबर सिंह प्रसिद्ध थे। चौधरी दिगंबर सिंह ने राजा महेंद्र प्रताप, मनीराम बागड़ी और राजा मान सिंह जैसे नेताओं को लोकसभा चुनावों में करारी शिकस्त दी थी। लगभग 25 वर्ष ये मथुरा जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे और मथुरा में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना करवाने का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। और अब याद कर रहे हैं हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक अशोक कुमार को। आज उनकी पुण्यतिथि है। अशोक कुमार को सन 1999 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। हिंदी सिनेमा के युग पुरुष कुमुद कुमार गांगुली उर्फ अशोक कुमार को ऐसे अभिनेता के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने उस समय प्रचलित थिएटर शैली को समाप्त कर अभिनय को स्वाभाविकता प्रदान की और 6 दशकों तक अपने बेहतरीन काम से सिने प्रेमियों को रोमांचित किया।
He was a member of the, like you mentioned, cinematic Ganguly family. He was honored in 1988 with the Dada Saheb Phalke Award, the highest national award for cinema artists by the Government of India. He received the Padma Shri in the year 1962 and Padma Bhushan in the year 1999 for his contributions to Indian cinema. Kumar reluctantly made his debut, interestingly, Mukesh, in the year 1936 with Franz Austen's Jeevan Naiya alongside Devika Rani. With Devika Rani in Achhoot Kanya in 1936, his breakthrough came the same year with another Austen's films, Achhoot Kanya, which was reformist piece featuring a Brahmin boy falling in love with a girl from the so-called untouchables in the Indian society. Let's listen to a snippet from that song, which was from Achhoot Kanya, incidentally also sung by Ashok Kumar. After the huge box office success of Achhoot Kanya, he delivered a hat trick of silver jubilee hits with Kangan, released in 1939, Bandhan, 1940, and Jhoola, which came out in 1941, all opposite Leela Chitnis. Stardom came to Ashok Kumar in 1943 with film Kismat. And in 43, Ashok Kumar played the lead role in Gyan Mukherjee's drama film Kismat opposite Mumtaz Shanti.
बिल्कुल, अशोक कुमार को दादा मुनि के नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया था. और दादा मुनि के अभिनय की सफर की शुरुआत की अगर हम बात करें तो वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी. 1936 में बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो की फिल्म जीवन नैया के अभिनेता अचानक बीमार हो गए थे और इसके बाद स्टूडियो के मालिक हिमांशु रॉय की नजर अशोक कुमार पर पड़ी और उनसे अभिनय करने का प्रस्ताव दिया. यहीं से उनके अभिनय की शुरुआत हुई और अशोक कुमार ने देविका रानी के साथ कई और फिल्में भी की थी जिनमें इज्जत, सावित्री, निर्मला आदि शामिल हैं. और इसके बाद उनकी जोड़ी लीला चिटनिस के साथ बनी थी जैसा कि आपने बताया. तो उनका एक फिल्म जो है गृहस्थी, उसका डायलॉग सुन लेते हैं.
अरे सुंदर, तुम यहाँ कब आए?
अभी थोड़ी देर हुई पिताजी.
लेकिन सुंदर, तुम्हें पता कैसे चला कि मैं?
सुनिए, पहले बताइए कि लड़का कौन है. देखिए, मुझसे कुछ न छुपाइए, जो कुछ भी सच सच बता दीजिए, आपको मेरी कसम.
सुंदर, तुमने बताया नहीं कि तुम कौन हो.
लेकिन आप बताइए ना, लड़का कौन है? ये तो कुछ उटपटांग कह ही रहा है.
तुमने क्या उटपटांग कह दिया सुंदर?
कुछ नहीं पिताजी, आपने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और आप मेरे कौन होते, तो मैंने कह दिया कि मैं आपका बेटा हूँ. ठीक कहा ना पिताजी?
हाँ बेटा, तुमने ठीक ही कहा.
और अनीता, अशोक कुमार के अभिनय की चर्चा उनकी फिल्म आशीर्वाद के बिना अधूरी ही रहेगी. इस फिल्म में उन्होंने एकदम नए तरह के पात्र को अपनाया था और इस फिल्म में उनका गाया गीत रेलगाड़ी रेलगाड़ी काफी लोकप्रिय हुआ.
रेलगाड़ी 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 छुक 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 बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 लोहे की सड़क लोहे की सड़क यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ.
और आज ही पुण्यतिथि है हैदराबाद स्थित कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र के पूर्व निदेशक लालजी सिंह की. वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे. लालजी सिंह भारत के नामी जीव विज्ञानी थे. और आज ही पुण्यतिथि है विश्व प्रसिद्ध भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर उस्ताद देबू की. उन्होंने कथक के साथ साथ कथकली के भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों का प्रशिक्षण लिया और फिर वे भारत में आधुनिक नृत्य के प्रणेता बन गए. और अब याद कर लेते हैं उन महान हस्तियों को जिनकी आज जयंती. इस क्रम में सबसे पहले प्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरकार की हम याद कर रहे हैं, उनकी आज जयंती है. उन्होंने 1892 में अंग्रेजी साहित्य में एमए की परीक्षा पास की थी और जीवन का अधिकांश समय ग्रंथों के अध्ययन और लेखन में व्यतीत किया. इतिहास और अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में भी उन्होंने अपनी विशिष्ट सेवाएं प्रदान की थी.
Today is also the birth anniversary of C. Rajagopalachari, born on this day in 1878. He passed away in 1972. He was the Indian statesman, writer, lawyer, Indian independence activist also. He was also the last Governor General of India when India became a republic in 1950, when the office actually got abolished. He was also the only Indian-born Governor General, as all previous holders of this post were British nationals. He served as the leader of Indian National Congress, Premier of the Indian Madras Presidency, Governor of West Bengal, Minister for Home Affairs of the Indian Union and Chief Minister of Madras State. He founded the Swatantra Party and was one of the first recipients of the India's highest civilian award, Bharat Ratna.
बिल्कुल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अपने अद्भुत और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण राजा जी के नाम से प्रसिद्ध हुए और महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक भी रहे हैं. और उन राजगोपालाचारी जी की बुद्धि, चातुर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे अनेक उच्च कोटि के कांग्रेसी नेता भी उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे. और आज ही जयंती है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अत्यंत सम्मान के साथ लिए जाने वाला नाम प्रफुल्ल चंद चाकी का. उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी. उन्होंने स्वामी विवेकानंद के साहित्य का और क्रांतिकारियों के विचारों का अध्ययन किया. इससे उनके अंदर देश को स्वतंत्र करने की भावना पुष्ट हो गई थी.
टुडे इज ऑल्सो द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पीटर एडले सास्टेड, बोर्न ऑन दिस डे 1941, द ब्रिटिश सिंगर सॉन्ग राइटर एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट. ही वॉज द ब्रदर ऑफ द सिंगर्स ईटन केन एंड द पॉप आइडल क्लीव सास्टेड. द सास्टेड हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बींग ओनली फैमिली वेयर थ्री सिबलिंग्स ऑल अटेंड सेपरेट चार्ट सक्सेस. Although his music was classified as pop, it generally encompassed the ballads derived from traditional folk music rather than traditional rock and roll. He is best known for the writing and performing of the song "Where Do You Go To, My Lovely." Here it is.
Like Molly and you drink, and you dance like ZZ Jamer,
Your clothes are all made by Burma, and there's diamonds and pearls in your hair. Yes, there are.
और आज ही पुण्यतिथि है भारतीय पुरातत्वविद हंसमुख धीरज लाल सांकलिया की। प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1974 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
टुडे इज ऑल्सो द बर्थडे ऑफ द इंडियन एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री, एक्टिंग इन हिंदी एज वेल एज तेलुगु एंड तमिल फिल्म। हर रोल्स इन कल्ट ट्रेजेडी फिल्म एक दूजे के लिए। आई एम प्लेइंग अ स्निपेट ऑफ अ सॉन्ग फ्रॉम दैट मूवी।
तो घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आज का सवेरे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त किया जाए। तो अनुमति दें मुकेश कुमार और अनीता आनंद को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। लेकिन आप सुनते रहें आकाशवाणी का एफएम गुरु चैनल।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, अवर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।